الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. حضرت جی کی طبیعت کچھ ناساز تھی اس لیے آج نہیں آ سکے. ہم سب دعا کرتے ہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت جی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے اور ان کی ضعف کو قوت میں بدل دے. وہ یہ حضرات ان ہستیوں میں سے ہیں جن کا دیکھنا بھی ہے جو ایمان کو حرارت بخشتے ہیں. ان کی صحبت مرید ہونا تو بہت بڑی بات ہے اور ان کی بیعت کرنا تو بہت بڑی بات ہے, لیکن ان کا دیکھنا ان کا سننا یہ ساری جو ہے نا یہ ایک تو یہ عبادت بھی ہے. جو بزرگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا تذکرہ عبادت ہے. جو زندہ شیخ ہوتے ہیں ان سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ان کا دیکھنا جو ہے روح کی تازگی کا سبب بنتا ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں جو ان ہستیوں کے پاس آ کے اور کما حقو ہو ان کے ہو جاتے ہیں, ورنہ پھر یہ ایک ڈرامہ ہی بن جاتا ہے. اور ان سے محبت جو ہے نا وہ محبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتی. سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں علم جو ہے وہ تو حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہیں. آج کل ماشاءاللہ ایسا میڈیا آ گیا ہے کہ گھر گھر جو ہے نا اگر دین سیکھنا چاہیں تو دین بھی سکھا دیتے ہیں, اور اگر آپ بے حیائی سیکھنا چاہیں وہ بھی عام ہے, اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو چیز زبان سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اسی لیے جو زبان کا میڈیا ہے, آپ مشائخ کی تقریریں بیان سنتے ہوں گے, لیکن جیسے ہی وہ ان آلات کا سہارا لیتے ہیں تو وہ رونق نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے کہ حضرت بابا جی لیٹی والے جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت آپ کی جب بیان سنتے ہیں تو اور بات ہوتی ہے, جب وہ کیسٹ میں آتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں ہوتی, وہ نور نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا وہ نور ختم ہو جاتا ہے جب ان آلات سے گزرتا ہے. یہ جو بات میں نے کی ہے یہ پلے باندھنے والی ہے. اور ان آلات کی مدد سے جو پیر بننا چاہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال لیں گے. اسی میڈیا پہ ناچ گانا بھی ہو رہا ہے, زنا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, شراب کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ بیچ میں اپنا روحانی تذکرہ کریں, یہ بات پلے باندھنے والی ہے, ایمان کو بچانے والی ہے. آپ ایک ہی کام ایک وقت میں کر سکتے ہیں, یا تو پھر فحاشی کی طرف جائیں تو کھلم کھلا جائیں, اور اگر آپ نے اللہ کی طرف آنا ہے تو پھر اللہ کے محبوب کی جو سنتیں ان پر عمل کرنا ہو. حضرت نے بارہا بیان فرمایا, آپ نے بھی سنے, وہ قلم بند بھی ہو گئے, وہ اس ریڈیو میں بھی آ گئے, پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں, لیکن اصل میں ان بیانات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان میں جو سر فہرست ہے حضرت جی فرماتے ہیں معاملات ہیں. معاملات کی ایک لمبی لسٹ ہے, اس میں نہ صرف بولنا بھی جو ہے نا یہ بھی معاملے میں آتا ہے. آپ کوئی بات کرتے ہیں, دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, یہ بھی کس کس میں آ جائے گا؟ یا کسی صوفی یا مفتی صاحب سے آپ پوچھیں, آپ کے دل کے اندر تو کوئی اور بات ہے, آپ کی زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے اور دانستہ نکل رہا ہے. ایک ہوتا ہے نادانستہ, اس کی پکڑ کیا ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور آپ کسی کے ساتھ لین دین کی بات کرتے ہیں کہ میں تجھے کل یہ کر دوں گا, اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس کے ساتھ اس نے یہ بات کی ہے اس کو کوفت کتنی ہوئی ہے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کو آپ ایذا پہنچا رہے ہیں. आप कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा और आप करते नहीं, और फिर उसके साथ एक बहाना भी बना लेते हैं, ये भी मामले में आता है। फिर आपने किसी से किसी को कुछ देना है तो आप कहते हैं मिल जाएगा। हमारे मोहल्ले में एक फैमिली ने किसी दूसरी फैमिली से कर्ज़ा लेना था, उन्होंने कर्ज़ा उनसे कभी पूछ नहीं की जब उनके हालात अच्छे थे। जब हालात ख़राब हुए तो वो लेने गए तो उनकी औरतों ने ना इनकी औरतों के खून सेक दिए, खून निकाल दिया। मर्द गए तो मर्दों के साथ भी किया। ये तो चलो और लोग हैं, लेकिन सूफ़ी के लिए जो है ना पकड़ सख्त है। मैं अगर कुछ करूँगा ना तो ना सिर्फ मेरी पकड़ होगी बल्कि जितने ये सूफ़ी बैठे हुए हैं इन पर जो ज़्यादा पड़ती है इसका भी गुनाह मुझे होगा। यार इसका ताल्लुक तो नेक लोगों से है और ये बात किस किस्म की कर रहे हैं। आप ये सब दुआ करें कि हमसे आज तक जो गलतियाँ हो गई हैं अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे और आइंदा हमें सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी पकड़ ना करें। इन्ना बदशा रब्बे कल शदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, रहीम है करीम है, लेकिन बात यह है कि उस रस्ते में चले तो रहीम व करीम हो ना। रात तो आप जा रहे हैं रावाली वाला और आप कहें मैं मदीना पहुँच जाऊँ, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये रास्ता चलना पड़ेगा और झूठ से बचें। खुदा की कसम जिसका देना है ना, हजरत बार बार फरमाते हैं कोशिश करें जल्दी दें, ईमान ना ज़ाया करके चले जाएं। या तो माफ़ करवाएं उसे, नहीं तो जायदाद बेचें, उसका कर्ज़ा उतारें। और कुछ लोग कर्ज़ा लेते इस गरज से हैं कि चलो ये तो मारो ना, फिरता रहेगा कुछ दिनों के बाद मर जाएगा, फिर इसके बच्चों को कौन देगा। ये और भी ज़्यादा सख्त है। ये तो मामलात पे हज़रत अक्सर बात फरमाते हैं कि मामलात सीधे रखें। फिर हज़रत आप जानते हैं कि हज़रत जी फरमाते हैं कि ये जो ज़िक्र है ये अफजल तरीन चीज़ है। ये क्या चीज़ है? अफजल तरीन, इसलिए कि ज़िक्र किसका है? अल्लाह का। और इसको जब आप पसे पुश डालेंगे, इसको अगर सानवी हैसियत देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। इसको मुकदम समझें। अगर ये औराद वज़ाइफ़ वाली किताब देखें ना, शुरू में लिखा है हज़रत ने कि असल चीज़ जो है ज़िक्रुल्लाह है। हाँ ये आप पढ़ें, आपकी जो है ना दुआएं मांगें इन कलमात तो ये बात के वसीले से, वो और बात है। लेकिन एक बात ये पल्ले बांध लें कि ज़ाकिर को कुछ मांगना नहीं पड़ता। ज़ाकिर को अल्लाह ताला देख रहा है कि तो ये तो मेरे रस्ते में लगा हुआ है, उसकी बातें तो वैसे ही अल्लाह पूरी फरमा देते हैं अगर वो ज़ाकिर हो। दूसरा ये है कि ये ज़िक्र जो है ये हम अल्लाह के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ये हज़रत जी के लिए नहीं करते, ना बड़े हज़रत जी के लिए करते हैं। ये किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। आप और मैं अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने अल्लाह के लिए करते हैं। मैंने एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था, हज़रत जी ने फरमाया जब मैं ध्यान करता हूँ कनाडा, अमेरिका, लंदन, गल्फ स्टेट, सऊदी अरेबिया, फिर फरमाया जब मैं देखता हूँ लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, बावल नगर, चिश्तियाँ और आगे रहीम यार खान, कराची, तमाम शहरों, कश्मीर, तमाम शहरों के नाम लिए, हज़रत फरमाते हैं कि खाल खाल तहज्जुद के लिए उठते हैं, खाल खाल। और इस ज़िक्र की निशानी पक्की होने की यही है कि ये तहज्जुद के लिए उठते, क्योंकि हमारे बड़े हज़रत जी बड़े फ़ख्र से फरमाते थे कि ये ना सिर्फ नमाज़ें बल्कि इसका तहज्जुद भी पक्का हो जाता है। अगर ये हम नहीं कर रहे थे इसका मतलब है कहीं खामी है। फिर ये ज़िक्र जो है ना इसके लिए ये नहीं कि मैंने 15-20 मिनट करने हैं। 15-20 मिनट तो हज़रत जी करते हैं क्योंकि आम नए लोग भी आए हुए होते हैं, पुराने भी होते हैं। फिर हज़रत की तवज्जो जो है ना वो इतनी कुव्वत वाली है कि वो 15 घंटे का काम कर जाती है। हम जब अकेले में कर रहे होते हैं ना और उन हजरात के सीने के साथ अपने सीने को जोड़ के करें, वहाँ से तो आ रहा है, लेकिन यहाँ जब तक गर्मी पैदा नहीं होती ना तो बात बनती नहीं है। बात तब बनेगी जब आप उठेंगे इस नीयत से। नफल अगर आपने 8 पढ़ने हैं या 12 पढ़ने हैं, उनमें से चार पढ़ लिए लेकिन टाइम निकालें जिक्र के लिए, और लंबी रातें 10 बजे अगर सोए वो तब आदत पड़ गई, हम सबको 12 बजे से पहले सोते नहीं हैं, 10 बजे सोएं, 2 और 3 के दरमियान आपकी आँख खुल जाती है। हाँ अगर हमने चारा ज़्यादा खा लिया हो तो वो और बात है, वरना आम आदमी फिर सो नहीं सकता। उसके बाद आपके पास 2-2.5 घंटे होते हैं, और इस मरकज़ में तो अल्लाह के फजल करम से वक्त ही वक्त है। हमें तो मस्जिद के लिए थी 1/2 घंटा पहले मैं जाता हूँ, 8-10 मिनट वो लगते हैं, फिर जाके तस्बीहात के लिए, तो वो आदमी की 1/2 घंटा वैसे ही ज़ाया हो जाता है। एक बात तो ये, फिर हम गए सियालकोट पिछली दफ़ा, हज़रत ने पूछा कि सियालकोट के हाल अहवाल सुनाए, मैंने कहा जी वो नहीं, उसी के बाद सियालकोट हज़रत जाते हैं बड़े एहतमाम से, और हज़रत का अपना घर है, और जिस तरह से मुर्शिदाबाद जाना होता है ना, हज़रत उसी मोहब्बत के साथ वहाँ भी जाते हैं। आपने देखा है कि छुट्टियाँ लेते हैं ना फौजी, वो कहते हैं घर जाने, घर एक ऐसी जगह है कि वो लंदन और पेरिस जो है ना उसके मुकाबले की कोई चीज़ नहीं। अपने घर की कुटिया जो है ना वो बलख बुखारे के चुबारों से ज़्यादा बेहतर होती है। तो अपने घर जाते हैं, हज़रत उस शहर में पैदा हुए, हज़रत बचपन ही से सच्चे सच्चे थे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की हिफाजत फरमाते हैं, ये नहीं कि वो हज़रत की खिदमत में आए जब छोटे से बच्चे थे। मैं सियालकोट में रहा हूँ 81 में, 80 और 81 के 2 सालों में मैं रहा हूँ वहाँ। वो लोग जो है ना इस बात की गवाही देते हैं कि ये बचपन में नहत नेक थे, इनको जो ख्वाबें आती थीं, जो इनके ख्यालात थे, और हज़रत बड़े कवि थे। जब कॉलेज में पहुँचे तो हज़रत को एजुकेशन मरे कॉलेज की, वहाँ हज़रत ने, वहाँ एक पुरानी सी मस्जिद थी जो कि बंद पड़ी थी, उसको साफ़ सुथरा किया, वहाँ जमात करवाते थे, और क्रिकेट भी खेलते थे, और क्रिकेट की टीम के कप्तान भी थे। और आप सब ने हज़रत को देखा है कि कितने कवि थे, लेकिन आपने वो नहीं देखा जब हज़रत शुरू में फ़ौज में गए किस कदर कवि थे। हमेशा फ्रंट रैंक में हज़रत होते थे, जब चलते थे तो ज़मीन हिलती थी। हम दोनों इकट्ठे जाते थे अपनी यूनिट में, वो कोई 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे थी। हज़रत ने अपनी जवानी को बचाया, वहाँ मस्जिद को सजाया, नमाज पढ़ाते थे खुद, और हज़रत ने कुरान मजीद हिफ्ज़ तो नहीं किया लेकिन क़िराअत सीखी उस कारी साहब से जो कुरान को माने का लिहाज रखते हुए पढ़ते थे। मैंने भी उनकी ज़्यारत की है, और कर्नल सलीम ने भी उनकी बहुत ज़्यारत की है। उनका इंतकाल हो गया, क्या कुरान मजीद पढ़ते थे एक एक लफ्ज़, और वो दिल में उतरता जाता था। उनके पास आपने कुरान पढ़ा, फिर हज़रत बचपन ही से जो है मुरव्वत अखलाक आला दर्जे का था, खिदमत करना साथ वाले की। आर्मी में भी ऐसा ही रहा, बहुत सारी चीज़ें मैंने हज़रत से सीखी हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको फॉलो किया जाए। हज़रत की जो सुची दाढ़ी, इसके साथ आप PMA में गए, आपको अल्लाह ताला ने यहाँ लाना था फ़ौज में, कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचना था। उस ज़माने में दाढ़ी वाले को बड़ा कंडेम करते थे, तो ये ISSB से निकल आए उसी दाढ़ी के साथ, कुव्वत भी थी और माशाल्लाह ज़हीन भी थे, बला के ज़हीन थे। हाफ़िज़ा तो अब इतना तेज़ हो गया, जितना जिस्म कमज़ोर हुआ है उसके साथ हाफ़िज़ा जो है कुव्वत पकड़ गया। हर एक का नाम आता है, उनके बच्चों के नाम आते हैं, और जो वाक़यात हैं उन वाक़यात को बिल्कुल उसी तरह बयान कर सकते हैं जैसे अभी। तो हज़रत को PMA में बड़ी अज़ियतें दी उन्होंने, ये पाकिस्तान आर्मी के पहले कैडेट थे जो दाढ़ी के साथ पास आउट हुए। फिर जब ये इन्होंने तबलीगी जमात के साथ चिल्ले भी लगाए हुए थे, तबलीगी जमात बहुत अच्छी जमात है, हमारे हजरत जी फरमाते थे इनके साथ उठा बैठा करो। फिर एक हमारा साथी था, उसने उसको कलम का बड़ा शौक़ था, उसने इनके साथ ना जंग शुरू कर दी कलमी। तो फिर आप जिसके साथ कुछ करेंगे तो वो भी पत्थर मारेंगे, वो भी ईंट मारेगा या ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और फिर कुछ ये है कि जमातें जब बनती हैं ना, लोग कहते हैं हमारी जमात में इतने हज़ार इतने लाख आदमी, लाखों की बात नहीं है, गिनती की बात नहीं है, बात है कि वो हीरे कितने हैं। एक हमारा साथी है, उसने आके कहा कि जनाब मेरा बेटा जो है ना, वो कहता है कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि कब्र का अजाब होगा और जहन्नम की आग होगी। अब ये चूँकि मेरी तरह के पढ़े हुए थे, अब उसको जवाब नहीं दे सकते थे। वो मस्जिद में आते हैं, पुराने साथी हैं लेकिन हैं वो हाथी टाइप, वो जनाब मुझे मेरे पास आ गए, कहते हैं यार ये बताओ। मैंने कहा मौलाना साहब बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। मौलवी साहब ने ना उनको ना काफ़ी आयात जो है ना वो बताई, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। उसने कहा यार मुझे लिख दो। उन्होंने कहा अच्छा मैं इनके नंबर आपको लिख दूँगा, कल ले रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपका बेटा गामदी को तो नहीं पढ़ता? उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ये उसी ने कब्र का अज़ाब और जहन्नम की आग माफ़ करा दी। फिर मैंने उन्होंने कहा कि अपने बेटे को अगर तबलीगी जमात में भेजते तो कम अज़ कम उसके अकायद तो दुरुस्त होते ना। ये जो हजरत के सुन्नतों पर अमल करना, ये वो जो अपने तबलीगी जमात के साथ चिल्ले लगाए या जो वक्त लगाया, फिर उस पर ऐसे कारबंद हुए कि फ़ौज में भी रहे तो आपने इन सुन्नतों पर अमल किया। और अब हमें भी कहते हैं हम उस तरह से अमल कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि कोशिश जो है ना वो अल्लाह के यहाँ नोट हो जाए तो वो बहुत है। हज़रत ने वहाँ बहुत सारी बातें की, जो साथी वहाँ गए थे वो खुशकिस्मत है। सियालकोट का इज्तिमा मिस करना ऐसा ही है जैसे इंसान ने ज़िंदगी के कुछ कीमती दिन जो है ना गंवा दिए। अगर सर के बल भी जाना पड़े ना तो सियालकोट के इज्तिमा में जाएँ। आपको पता है सियालकोट वो सरजमीन है जिसमें बड़े बड़े औलिया किराम ने पढ़ा है, उनके पांव लगे हुए, मुजद्दद अलफसानी भी वहाँ पढ़ते रहे। ये हमें उधर उस दिन पता चला जब मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में बयान किया। उसके अलावा जो और लोग थे वो भी वहाँ रहे, बड़ी हस्तियाँ वहाँ आई। और वहाँ जाके जब हजरत जिक्र करवाते हैं तमाम मशाइख की तवज्जो होती है, जैसे हमारे मुर्शिदाबाद में जहाँ से कोई गुज़रा हो ना, क्योंकि जब हम मर जाएंगे ना हमारा जिस्म तो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, रूह अगर अच्छी गई है तो वो ताजगी में रहेगी, अगर इस रूह को हमने उसकी ग़िज़ा नहीं दी तो ये बेचारी तकलीफ़ में होगी। और इसकी ग़िज़ा हज़रत फरमाते हैं कि ज़िक्रुल्लाह। इस रूह की ग़िज़ा का एहतमाम हम नहीं करते, मसले मसाइल बड़े बताते हैं, तकरीरें भी बड़ी होती हैं, लेकिन रूह के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। जिसने काम आने हैं, जिसमें फना हो जाने, लेकिन रूह फना नहीं होगी। ये रूह की ग़िज़ा का एहतमाम। अब वहाँ जाके ना एहसास होता है, आप जो लोग गए हैं वहाँ इस कदर रिक्कत तारी होती है बंदे पर ना, मैं कहूँ यार ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई किसी का अजीज़ मर गया होता है ना तो आदमी रोता रहता है। वहाँ आंसू बंद ही नहीं होते थे मेरे, और भी मैंने लोगों को देखा वहाँ रिक्कत आ रही होती, और वो उस तवज्जो की वजह से, और हजरत की अपनी तवज्जो भी बहुत। फिर जब आप तवज्जो कर रहे होते हैं तो मशाइख भी तवज्जो कर रहे। अब ये बात आम आदमी की समझ में उस वक्त आएगी जब वो अल्लाह अल्लाह करेगा। सुनने सुनाने में तो टाइम लग जाता है, आदमी देर हो जाती है, बहुत मुश्किल है, इसमें वक्त लगाने की ज़रूरत है। वक्त लगाएगा तो जो बात मैंने आपके साथ की है तब उसको समझ आएगी, उसके बगैर नहीं समझ आएगी। अगर वक्त नहीं है तो मेरा सुनाना या किसी मौलवी साहब का सुनाना वो बेसूद है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए टाइम लगाना पड़ता है, वक्त लगाना पड़ता है, और जिन्होंने ये सीख लिया है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इसको टाइम दें, इसको वक्त दें। अगर नाश्ता रह जाता है तो रह जाए, खाना खाने रह जाए, लेकिन ज़िक्र ना रहे। और ज़िक्र जो है ना इनफरादी तौर पर कुव्वत से करें और ज़्यादा देर करें। ये आप करके देखें ना, अगर आप डेढ़ मिनट के लिए लतीफ़े पर डेढ़ मिनट दे रहे हैं तो आप क्या उसको, आप उस पर लगाएं ना 5-10 मिनट, जब वो गर्म होगा तो फिर आपको मज़ा आना शुरू होगा। अल्लाह का नाम जो है ना वो मोहब्बत से ले, फिर आप देखेंगे कि आपके लिए ज़िक्र जो है ना वो कोई मुश्किल नहीं रहे। फिर हज़रत ये फरमाते हैं, आपने अक्सर हज़रत जी से सुना कि देखो जो नेकों के साथ होते हैं ना, वो खुद अगर नेक नहीं भी है ना तो उनकी सोबत जो है ना वो इसको ले जाएगी। और उसमें मिसाल देते हैं बहरी जहाज़ के साथ उस कील का भी, कि वो उस तख्ते पे लगी होती है, हालांकि वो वैसे उसको डालें तो वो समंदर में डूब जाए, लेकिन वो चली जाती है उसके। चलें हम जंग आलूदी सही, लेकिन हम ये कोशिश तो करें कि इनके साथ हम जुड़े रहें, जुड़े रहेंगे तो काम बन जाएगा। फिर मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, अक्सर कहा है, आज भी फिर दोहराता हूँ कि शेख को कभी किसी साथी की शिकायत नहीं लगानी चाहिए। अगर आप उसके हमदर्द हैं ना तो उसको अपने घर बुलाएं, खाना खिलाएं, प्यार मोहब्बत से बात करें और उसे कहें यार मेरे में भी ये खामी है, ये खामी जो है ना किसी तरह से दूर हो जाए, फिर तो है कि आप उसके साथी हैं। उसकी शिकायत शेख को नहीं लगाएं, आपको नहीं पता कि हज़रत को कितनी तकलीफ़ होती है, आप उस शख्स की इसलाह नहीं करवा रहे, आप अपने शेख को मुशक्क़त में डाल रहे हैं, उसकी शिकायत ना लगाएं। उसकी कोई अच्छी बात आपको पता है तो वो बताएं। एक हमारे हज़रत का सिर्फ मौत के दे उस बैत शायद नहीं की उसने, मैंने उसको एक पैगाम दिया ना, उसने जिस तरीके से जवाब दिया ना, मेरा टेलीफोन पे मैं रोना शुरू हो गया। उसने कहा शेख ने मुझे याद किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कोई काम कर दूँ। उन्होंने कहा मेरी जान चली जाए लेकिन मैं उनकी इस हुक्म की पूरी तामील करूँ। ये है मोहब्बत, इतनी होनी चाहिए अपने शेख के साथ कि जो वो कहते हैं ना उसको नोट कर लें और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। टाइम बहुत हो गया है, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, और जो सुने अगर कोई इसमें गलती है तो आप मुझे माफ़ फरमाएँ, आप भी तस्दीक कर सकते हैं। तो जितना ज़िक्र करेंगे ना, मैं आपको बताऊँ, आप ना सच्ची बात है हमारे पास वक्त भी नहीं होता है, और एक हमारे अंदर ना वो अर्ज भी नहीं होती कि मौलवी साहब के पास बैठें तो उनसे कोई मसले मसाइल समझ लें, और हदीस का दर्स हो रहा हो तो उसमें बैठ जाएं, कुरान की तफसीर पढ़ी जा रही हो तो उसमें हो जाएं, कुछ पल्ले पै जाएगा। 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, वो मुझे तो अभी सारी याद नहीं है, मौलवी साहब से आपने पूछ लेना। उनमें एक जो है ना वो है कि जब जिना आम हो जाएगा मुआशरे में तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ आएंगी जो आपके आबाओ अजदाद ने नहीं सुनी होंगी, और इस वक्त इस महज़ब मुआशरे में इस कदर ये आम हो गया जिसकी कोई गिनती में नहीं आता। फिर आपने फरमाया जब आप नाप तौल में कमी करेंगे ना तो अल्लाह ताला बारिश बंद कर देंगे, जब ज़कात नहीं देंगे तो इसके ऊपर भी वही दाई है। दो और चीज़ें में क्या चीज़ें और दूर हजरत, कैद साली हो जाएगी, आपस में लड़ पड़े। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वक्त इस मुआशरे में है। और आप अगर आप ज़िक्र करें कुव्वत के साथ, तो हज़रत फरमाते हैं कि इसका इसके असरात दूर तक जाते हैं। पिछले हफ्ते बताया ना हज़रत शाह साहब ने कि इसके असरात मुरतब होते हैं मुआशरे पे, हम खुद करने वाले बन जाए ना। बहुत लोग शिकायत करते हैं हमारे घर में जिन्नात का असर है, ये कुव्वत से ज़िक्र करें ना, वो जिन बेचारा भागेगा कि यार ये कोई क्या बला आ गई है जो मुझे मार पड़ रही है। जिन जिन भी भाग जाएंगे, बीमारियां भी चली जाएंगी। करें तो सही ना, करते नहीं हैं। और क्या बहुत सारी बातें हैं, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो नए साथियां हैं उनके लिए अर्ज़ है कि हम ये ज़िक्र जो है ना, ज़िक्र खफ़ी सांस के साथ ज़िक्र करते हैं। और ये कलब जो, या यूँ समझें कि जो दिल है ना, जहाँ वो तो आजकल सब ने देखा हुआ है, उसके अंदर ये मादा मौजूद है। वो बिल्कुल एक्टिव था जब ये पैदा हुआ, लेकिन जब ये जवान हुआ, बलूगत को पहुँचा, वहाँ से ले के जो इसकी जवानी के दिन, फिर इसका बुढ़ापा, वो जो नहुसत इसके ऊपर पड़ती रही ना, उसकी दबीजतें इस पर जमी हुई हैं, वो अब खुरचनी है। लेकिन उनके खुरचने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसका, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में बताया कि इसके खुरचने का एक ही तरीका है, अल्लाह का जिक्र। वो उतरेगा जंग, वो उतरेगी मैल, वो स्याही, तो फिर ये देखने के काबिल होगा, फिर ये सुनने के काबिल भी होगा, फिर ये आपको कमांड देने के भी काबिल होगा। अब सारी कमांड नफ्स से आती है, क्योंकि नफ्स जो है वो उसका ताल्लुक है मादी चीज़ों से, और कलब का ताल्लुक है रूहानी चीज़ों से। जब आप इसको रूहानियत की तरफ लाएंगे तो फिर ये आपको कमांड देगा, और फिर नफ्स की कमांड जो है वो निगेट होती रहेगी। और इसको करने का तरीका ये है कि यहाँ जब सफ़ें बन जाएंगी सीधी, तो हज़रत खुद ज़िक्र करवाते हैं, आज हज़रत खुर्शीद साहब करवाएंगे। तो ये पहले चंद कलमा, तीसरा कलमा पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाह शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान, फिर ये अल्लाह अल्लाह कहेंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हु की ज़रब जो है ना वो लगानी है आपने, यहाँ से सांस खींचना है अल्लाह हु, ये खींचा आपने, लेकिन ये है बाई नंबर जो बता रहा हूँ, लेकिन इसको फिर तेज़ी से करना है। इस तरह से आप करते रहें, मुसलसल करें, ऐसा भी अगर करते हैं लेकिन मुसलसल करें, ताकि ये ज़रब लगती रहे लगती रहे। पानी गिरता है ना एक एक बूंद, वो भी सुराख कर देता है पत्थर में। अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कलब जो है ना वो चमक जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और नया साथी जब कोई दाढ़ी के बगैर या छोटी दाढ़ी का आता है तो तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जो मैच्योर साथी हैं ना, जब वो कटवा के आते हैं ना, फिर बड़ी तकलीफ़ होती। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
एक बार हमें दिन में आए।